नमस्कार, आदाब दोस्तों। समाचारों में जिस राजनीति का जिक्र होता है रोज, आखिर कैसे हुई थी उसकी खोज? राजनीति के दांव पेच और अधिकारों कर्तव्यों की सारी बातें जानना चाहते हैं? तो सुने आज का राजनीति शास्त्र विशेष क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम।
नंद किशोर शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हूँ। मोबाइल वाणी ने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया, इसके लिए मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह पॉलिटिकल साइंस का 42वां एपिसोड है। 41वें एपिसोड में मैंने आपको विश्व राजनीति में दो ध्रुवों की समाप्ति के संबंध में जानकारी प्रदान की थी। इस एपिसोड में मैं आपको विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता की समाप्ति के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स के विषय में प्रारंभिक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। विश्व राजनीति में सोवियत संघ की दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था की समाप्ति के परिणाम काफी गंभीर रहे। इसके परिणाम स्वरूप दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा का आविर्भाव हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभार हुआ और इसके साथ ही अनेक देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति से पूर्व सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों को एक सत्तावादी एवं समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण के दौरान काफी कष्टप्रद रास्ते से गुजरना पड़ा। रूस सहित सभी मध्य एशियाई गणराज्यों तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के दौरान एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से पुकारा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा निर्देशित यह मॉडल शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करने के सिद्धांत में विश्वास करता है। पूर्व सोवियत संघ के विभिन्न देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता भले ही अलग अलग हो, उसकी दिशा और चरित्र बड़े पैमाने पर मिलते जुलते थे। शॉक थेरेपी की मान्यता थी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रत्येक देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अंगीकार करना था। इसका तात्पर्य पूर्व सोवियत संघ की प्रत्येक संरचना से पूरी तरह छुटकारा पाना था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता के अंतर्गत यह स्वीकारा गया कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसमें राज्य की संपत्ति का निजीकरण तथा व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को शीघ्र अपनाने की बात सम्मिलित थी। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और इस प्रकार खेती का तौर तरीका पूंजीवादी पद्धति वाली हो गई। शॉक थेरेपी व्यवस्था के तहत संक्रमण के दौरान राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद को छोड़कर किसी भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था को इजाजत नहीं दी गई। इस व्यवस्था के तहत अब यह माना जाने लगा कि कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही अपना विकास कर सकता है। यही कारण था कि मुक्त व्यापार की नीति को स्वीकार किया गया। वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता तथा मुक्त व्यापार की नीति को पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए आवश्यक समझा गया। संक्रमण के इस दौर में सोवियत गुट के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त तो किया ही गया, साथ ही उस गुट के हर राष्ट्र को एक दूसरे से जोड़ने के स्थान पर सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे ये सारे देश पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित हो गए, जहाँ के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपने विभिन्न अभिकरणों और संगठनों के जरिए पूर्व सोवियत गुट के देशों के विकास में लग गए। चूंकि शॉक थेरेपी की शुरुआत आघात पहुंचाकर निदान करने की होती है, इसलिए 1990 में अख्तियार की गई इस नीति से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की आम जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। जहां तक रूस का प्रश्न है, उसका संपूर्ण राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा तहस नहस हो गया। विवश होकर उसके 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के स्थान पर बाजारू शक्तियों द्वारा आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण कार्य किए जाने का परिणाम बड़ा घातक हुआ। यहाँ सभी उद्योगों के अस्तित्व को समाप्त कर देने वाला कदम साबित हुआ। यह इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल इसलिए कहलाया क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों के मूल्य को कम से कम आंक कर उन्हें सस्ते दरों में बेच दिया गया। अधिकांश नागरिकों ने धन की आवश्यकता के चलते इस महाबिक्री में भाग लेने संबंधी अपने अधिकार पत्रों को कालाबाजारियों के हाथों में बेच दिए। मुद्रा स्फीति में ज्यादा वृद्धि होने से लोगों की जमा पूंजी तो गई ही, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई। सामूहिक कृषि की प्रणाली के समापन से वहां के लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं रही। परिणाम स्वरूप रूस द्वारा बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात किया जाने लगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।